نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير جنت کی پہلی صبح. اس ٹاپک کو میں نے اس وقت اوکے کیا تھا جب ایک لیکچر ہوا تھا ہمارا اسلام آباد سے قبر کی پہلی رات. تو اس کو سننے کے بعد اور جو اس کا رسپانس تھا اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کیوریس تھے تو میں نے سوچا کہ بیلنس ہو جائے, بعد میں جو لوگ بھی سنیں گے ان کو دونوں ہی باتیں مل جانی چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اس زمین کے لیے نہیں بنائے گئے. آپ نے آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن پاک میں ضرور کہیں نہ کہیں پڑھا بھی ہوگا یا سنا ہوگا, اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جو تعارف قرآن میں ہے وہ کیا تھا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً. فِي الْأَرْضِ خلیفہ کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت کے لیے نہیں بلکہ زمین کے لیے بنایا تھا. بیچ میں وہ جو جنت میں بھیج کر ایک اس کا تھوڑا سا سلاٹ رکھوا دیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ یہ تمہاری منزل ہے. تو یہ دنیا جس میں آپ اور میں ہیں یہ ہماری منزل نہیں, یہ راستہ ہے. اصل ہم سب اس جنت کے لیے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور جنت کو دنیا میں فیل کرانے کے لیے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وہاں سے جب گزارا تو ہماری نسلوں کو, یعنی ہم میں سے ہر ایک, آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھیں اور آنے والی قیامت تک کی ہر نسل, ہماری ہی نسلوں میں سے جو آگے لوگ آئیں گے, بائی ڈیفالٹ, جس کو آپ کہتے ہیں کہ نہ بھی کہیں نہ بھی کہیں, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا, اچھا ہم یہ پڑھ کر اپنے ماں باپ کو بخش دیں, اچھا یہ قرآن پڑھا ہے تو یہ ان کو میں بخش دوں. تو میں نے کہتی ہوں کہ اگر آپ بخشنا بھول گئیں تو کیا آپ کے پیرنٹس کو نہیں پہنچے گا؟ تو میں کہتی ہوں کہ بائی ڈیفالٹ آپ کی ہر نیکی, اور اللہ نہ کرے کہ آپ کا کوئی گناہ ایسا ہو جس پہ ماں باپ کا بھی کوئی انٹریکشن ہو, تو اگر وہ بھی ماں باپ کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے دل میں جنت کی طلب رکھی ہے. کیونکہ آدم اور حوا سے جب ایک درخت کا پھل چکھا گیا تو فوراً احساس ہونے کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو کیا کہا, قل نہبط منہا جمیعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آپ دیکھیے, قدم قدم چلتے جائیں تو ایک ایک دن میں ہی سفر طے ہو جاتا ہے. آج اس لیکچر میں اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے, وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی کہ ہم جنت کی تیاری کے لیے آئے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ میں سے کوئی اپنا گھر بنا رہا ہو اور اس گھر کو بنانے سے پہلے کسی کرائے کے گھر میں موو ہو جائے کہ ایک سال, کچھ مہینے, وٹ ایور جو بھی ان کا ٹائم اسپین ہے, اس کے اندر ہم جلدی سے اپنا گھر بنائیں گے اور پھر ادھر موو ہو جائیں گے. اب اس کی خواہش کوئی پوچھے تو کیا خواہش ہوگی؟ جلدی بنے. آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا, اچھا نہیں ایک سال کی بجائے دو تین سال لگے پھر وہ گھر بنے. آف کورس ہم بے صبرے ہوں گے, ہم کہیں گے یہ کرائے کا گھر ہے, یہ چھوٹا گھر ہے, یہ پرانا گھر ہے, یہ کسی کا گھر ہے, مجھے اپنے گھر جانا ہے. بس ایک ایمان والے کے دل میں جنت کی ایسی ہی خواہش ہوتی ہے. یہ جو صحابہ کرام کے قصے آپ پڑھتے ہیں کہ وہ جنت کے تذکرے سن سن کے بھاگتے تھے, میدان بدر اور احد کے کئی قصے آپ کو سیرت میں ملتے ہیں. وساری الی مغفرت من ربہم وجنت عرضھا کعرض السماوات والارض. آپ وہ آیت پڑھے تو اس کی شان نزول میں ایک صحابی کا قصہ آتا ہے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی, عمیر بن حمام ان کا نام تھا, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور میں کھجوریں کھانے میں ٹائم لگا دوں. انس بن نظر نے کہا مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ہمیں کیوں نہیں آتی؟ کوشچن لکھیے, ہمیں جنت کی خوشبو کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم نے اس دنیا کو جنت سمجھ لیا اور اس دنیا کو جنت بنانے کے شوق میں ہلکان ہو گئے یا ہلکان ہو گئے. کولو کے بیل بننے میں ہمارے غم, ہمارے ہم, ہماری خواہشات, ہماری تمنائیں, ہمارے ادھورے منصوبے صرف اس دنیا کے لیے. ہمیں غم تو ہے تو اسی کا ہی ہے, बच्चे 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 पढ़ जाएं, शादी हो जाए, बच्चे अब इनके हो जाएं, अब इनका घर बन जाए, अब ये फलां बेटे का हो जाए, अब ये का हो जाए। अपनी अपनी ख्वाहिशात हम पूरी कर रहे होते हैं और हमारा दूसरों पे आता है, बुरी नहीं है, लेकिन ये दुनिया गम लगाने की जगह नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ जो आप लोग भी अक्सर खत्म कुरान की दुआ में पढ़ते होंगे, ला तज अली दुनिया अकबर हमीना, अल्लाह इस दुनिया को हमारा बहुत बड़ा हम या गम न बनाना। तो जब दुनिया गम और हम बन जाती है तो फिर याद रखिए दुनिया की जो नेमतें मौजूद होती है ना, वो भी नहीं हम इंजॉय करते। और अफसोस के साथ कहूँगी आज हमारा यही हाल है, हमारे पास खाने की नेमतें होती हैं लेकिन हम उसको इंजॉय नहीं कर पाते, हमारे पास बहुत सारी पहनने ओढ़ने की चीज़ें होती हैं लेकिन हम उसको इंजॉय नहीं करते। इवन नेमतें हैं लेकिन हम उन नेमतों को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते। और उसकी वजह ये नहीं है कि कल क्या होगा, यानी कल का रिस्क है हमारे पास, एक महीने का भी है, और मुतवसत अच्छे लोग अच्छे घरों में जो के खाते पीते हैं साल का भी रिस्क मौजूद है। और माशाल्लाह हम अपने इर्द गिर्द देखें जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, मैं कहती हूँ सारी जिंदगी अब कुछ ना कमाएं तो उनकी नस्लों की नस्लें खा सकती हैं, प्लॉट बेचते जाएंगे, प्रॉपर्टियां बेचते जाएंगे, खाते रहे, खाना पीना क्या मुश्किल है। ये जो हमें हौका हो जाता है ना हर वक्त, हर एक दिन का ये है वो है, और ये ना हो वो ना हो, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, खाना महंगा, भाई आप कम कर दें, बिजली खुद ही सस्ती हो जाएगी। आप एक ही जगह 6 बल्ब जलाएंगे तो महंगी होगी, आप एक गाड़ी 10 दफा दिन से गुजारते हैं बाहर जाती है आप कम चलाएंगे तो पेट्रोल आपका खुद ही सस्ता हो गया। एक बुजुर्ग थे तो वो कहा करते थे कि जो चीज़ महंगी हो जाती है मैं उसको अपने लिए सस्ता कर लेता हूँ। तो लोगों ने समझा नहीं उनकी बात को कि ये कैसे हो सकता है, उन्होंने कहा मैं उसका इस्तेमाल छोड़ देता हूँ। और मैंने आज भी देखा है कुछ लोगों का अपने बिल्कुल इर्द करीब जो चीज़ उनको कोई बता दे ना कि ये महंगी, वो खाते ही नहीं। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ साल पहले चिलगोजे बहुत महंगे मशहूर हो गए, तो जब चिलगोजे इतने महंगे हो गए तो खाने की जरूरत क्या, नहीं खाएंगे तो खुद ही सस्ते हो जाएंगे ना। तो कहने का मतलब ये है आप जितना इस दुनिया के पीछे भागेंगे ना, ये दुनिया आपको उतना सताएगी, उतना खपाएगी। जरा सा तसव्वुर कीजिए, आप कोई भी काम करें, आप मिसाल है शादी से पहले बच्चियां खोई खोई रहती थी, अब तो मुझे नहीं पता उनको खोने का भी वक्त है कि नहीं, क्योंकि वो आखिरी वक्त पे भी पाई जाती हैं बाजारों में, पार्लर्स में, बुटीक्स में। लेकिन एक बड़ी रिवायती सी बच्ची का जहन में तसव्वुर लाए ना, तो शादी से कुछ अर्सा पहले ऐसे चौंक चौंक जाती थी ना, पता नहीं क्या होगा, मैं ससुराल जा रही हूँ, मेरे साथ क्या होगा, यानी एक बड़ा अनयूजुअल एक्सपीरियंस होता था। इसी तरह खुदा न खास्ता आप में से किसी का कोई ऑपरेट होना, ऑपरेशन होना हो, कोई भी डॉक्टर के पास चेकअप करना हो, तो एकदम दिमाग में नहीं आ जाता। हम बचपन में ख्वाब में भी पेपर ही दे रहे होते थे, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर आ गया, नहीं हो भाई आगे पीछे कभी नहीं ये ख्वाब आया, आज क्यों आ गया। तो चलिए आज जरा सा तसव्वुर करते हैं, विजुलाइज करना कहते हैं इसको। आज बहुत ही प्यारा तरीका है तालीम है, वो कहते हैं कि तुम जो चाहते हो उसको विजुलाइज करो। अभी चंद दिन पहले मेरे हस्बैंड उन्होंने एक कोर्स किया विजनरीज के नाम पे, और उनसे वो बातें सुन सुन के मैंने भी नियत कर ली है कि मैंने उर्दू में कराना है। हम विजुलाइज नहीं करते। आप बच्चों को कई ख्वाब दिखाते हैं, अच्छा कभी वीज़ा लग गया तो हम अमेरिका जाएंगे, फिर हम डिज्नीलैंड जाएंगे, अच्छा कनाडा का वीज़ा लग गया तो हम नियाग्रा फॉल देखेंगे। तो हम तसव्वुर की निगाह से देखते हैं। आज भी मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम, आज से कई साल हो गए, अमेरिका के ट्रिप के दौरान कोई ऐसी फ्लाइट थी कि पेरिस एयरपोर्ट पे कुछ घंटे का स्टॉप ओवर था, बैठ नहीं जाना था, सिर्फ एयरपोर्ट पे। वो पहली मेरा एक शऊर है कि जब मैं पेरिस एयरपोर्ट पे जा रहे अंदर थी, हम देख रहे हैं घूम फिर, तो मैं अपने आप को बार बार यकीन दिला रही थी मैं पेरिस में। अब ये मेरे साथ पेरिस का कैसे, प्रोफेसी परफ्यूम, फिल्मों में पेरिस, एफल टावर, आपको मुझसे पूछे पेरिस में जाना है तो मैं कुरान की मोहब्बत के अलावा और कहूंगी नहीं जाना, है ना। फैंटेसी होती है, फिल्मों में आपको कुछ ख्वाब दिखा दिए जाते हैं, कुछ शादी से पहले के लड़की लड़के हीरो हीरोइन के ताल्लुकात, उसने लोगों के लिए शादी और बीवी और मतलब ये सारी चीज़ें बड़ी विजुलाइज कर दी ना। इंडियन फिल्मों की शादियां देख देख के उसको विजुलाइज करके लोग आज अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो मैं आपको विजुलाइज करने की अहमियत बता रही हूँ। अगर वाकई आप चाहते हैं कि आप जन्नत में जाना है तो विजुलाइज करें, कभी खुद भी अपने बच्चों के साथ बैठकर जन्नत की बातें करें, हमारा जन्नत का घर कैसा होगा, हम किस मोहल्ले में रहेंगे, हम वहाँ क्या कपड़े पहनेंगे, हम किधर जाएंगे, जरा सा तसव्वुर में लाएं। चलिए मसलन थोड़ा सा तसव्वुर करते हैं, मैं आपको विजुलाइज कराती हूँ। पहले तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा ये गुमान सच्चा करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीसे कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है अना इंद ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ, मेरा बंदा मेरे से जैसा गुमान करता है मैं वैसे ही हूँ। अल्लाह से अच्छे गुमान किया करें, अल्लाह आपके साथ अच्छा मामला करेगा। आप अल्लाह ताला के साथ बुरे गुमान करेंगे ना, तो अल्लाह ताला के साथ आपका मामला वैसा ही होगा। हम कई दफ़ा अल्लाह ताला के साथ बड़े बदगुमान होते हैं, जैसे वो एक मैंने किस्सा पढ़ा कि एक बद्दू था, तो उसको किसी ने आके हिसाब किताब से डराया, अच्छा देखो मरोगे, मौत आएगी, फरिश्ते आएंगे। तो उसने कहा अच्छा फरिश्तों को कौन भेजेगा? कहा अल्लाह भेजेगा। कहता फिर खैर है? कहता तुम्हें पता है कब्र में हिसाब किताब होना है। कहा अच्छा कौन लेगा? कहा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा अल्लाह ने लेना है, फिर खैर है? का मैदान अशर में, क़यामत के मैदान में जब तुम खड़े किए जाओगे ना, तो वहाँ तुम्हारा हिसाब किताब होगा। का हिसाब लेना किसने है? उसने कहा अल्लाह ने। कहने लगा फिर मुझे कोई फिक्र नहीं। यानी आप सोचिए, गुमान है ना, एक बद्दू अनपढ़ चिट्टा। हम बहुत सारा पढ़ लिख कर भी कभी कभी कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल हो जाते हैं। हमें हर शख्स जहन्नमी दिखता है, हर एक मुनाफिक दिखता है। हम अक्सर लोगों के बारे में पूरा स्टैम्प पैड रख के बैठे होते हैं कि इसने तो जाना ही जहन्नुम में। अच्छा अगर किसी वजह से ये चला गया ना, तो कोई मेरे साथ ही की हुई इसकी नेकी होगी। ऐसा ना सोचें। आप अल्लाह ताला के साथ जैसा गुमान करेंगे, अल्लाह ताला आपके साथ वैसा ही मामला करेगा। तो जितना ज़्यादा आपके मेरे तसव्वुर में अल्लाह ताला का अच्छा तसव्वुर आएगा, अल्लाह ताला हमारे साथ अच्छा मामला कर देगा। और अगर हमने कभी बुरी बातें ही सोची हुई, क्या पता फिर वही हो जाए कि बंदा तू चाहता ही ये था, तेरा इरादा ही यही था। इसका ये भी नहीं मतलब कि सिर्फ आप अल्लाह ताला के साथ अच्छे गुमान करके बैठ जाएं, इरादों के साथ नियतें भी हैं। तो हमेशा अल्लाह ताला के साथ अच्छा सोचिए। ये अल्लाह ताला से मोहब्बत है। जितना आप अल्लाह ताला को जानेंगे, अस्माउल हुस्ना को पढ़िए, अल्लाह ताला के नाम उसके एट्रीब्यूट्स को देखिए, अमेज़ अस्माउल हुस्ना, हर खूबी पढ़ के लगता है मैंने बख्शे जाना है। हजरत उमर फारूक से किसी ने पूछा कि बताएं कि अगर आपको ऐसा लगे कि सिर्फ सबको अल्लाह ने बख्श देना है, किसी एक को नहीं बख्शना, खुद कहते थे कि मैं अपनी तसव्वुर की निगाह से, ये भी विजनरी विजनाइज करते थे कि मुझे ऐसा लगता है मैं क़यामत के मैदान में हूँ और अल्लाह ताला ने आवाज़ लगानी, आज मैंने सबको जन्नत देनी है, सिर्फ एक शख्स को नहीं देनी, तो मैं डर जाता हूँ कि वो मैं हूँ, आपने गुना। और मैं दूसरे ही लम्हे सोचता हूँ कि अल्लाह कहता है मैंने आज किसी को जन्नत नहीं देनी, सिर्फ एक को देनी है, तो मैं कहता हूँ उमर जी तू है। दैट इज द ब्लेसिंग। अल्लाह से कभी बदगुमाना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, वरना बड़े थोड़े लोग जन्नत में जाएंगे, एक ख़ास मसलक के लोग, फिर उसके बाद एक ख़ास गेटअप के लोग, फिर एक जगह ख़ास साइन किए हुए लोग, किसी से एफिलिएटेड हुए हुए लोग। यानी हर बंदा अपने दौर पर है। नहीं यदखुल जन्नत इल्ला मन काना हूदन व नसारा। अल्लाह ने यहूद और नसारा का ये कॉल कुरान में नकल कर दिया कि देखो देखो यहूद की खुशफहमी क्या थी कि जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी है कि वो पहले यहूदी बने, और बस अब अल्लाह का तो फैसला यही है कि यहूद ही सिर्फ जन्नत में जाएंगे। और नसारा ने भी कोई कमी ना की, उन्होंने कहा ना 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 यहूद नहीं जाएंगे, लई यदखुल जन्नत इल्ला मन काना नसारा। आज हम भी ये कहते हैं अपने फिरके, अपने मसलक, अपनी पसंद के लोग, इवन नेकियों में से भी हमें से अक्सर लोगों ने अपनी पसंद की नेकियां चूज की हुई हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप समझिए, सोचिए कि अल्लाह सुबहान तआला आपको जन्नत में ले जाता है और अल्लाह आपका मेरा गुमान सच करते हैं। अब अल्लाह ताला आपसे पूछता, इमेजिनेशन में लाएं, अपनी वो ख्वाहिशात बताओ जो दुनिया में पूरी ना हो सकी। सोचिए जरा, कोई ख्वाहिश आज यहां बैठे हुए ना नहीं पूरी हुई ना, तो ना सही, आगे जाके ले लेंगे। हेयर और देयर, देखिए मैं पाकिस्तान से अमेरिका जाती हूँ या मैं नॉर्वे जाती हूँ, मैं कोई चीज़ यहाँ से लेके जाना चाहती हूँ और वो नहीं मिलती या नहीं जाती, तो मैं क्या कह सकती हूँ? वहाँ से ले लें, हर चीज़ मिलती है। ये तो एक हमारा ही ऑब्सेशन होता है ना कि इधर से उधर कुछ नहीं मिलना, उधर जाते हैं तो कहते हैं उधर से कुछ नहीं मिलना, और हर वक्त इधर का सामान उधर और उधर का सामान उधर होते रहते हैं, हालांकि हकीकत ये नहीं है। तो अल्लाह ताला बंदे को जब ये पूछेंगे कि बताओ तुम्हारी वो ख्वाहिशें जो दुनिया में पूरी नहीं हुई, आप यहाँ बैठकर सोचिए आप क्या कहेंगे। कोई है ख्वाहिश? आप कहेंगे कौन कौन सी बताऊं, हजारों ख्वाहिश ऐसी कर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले, क्योंकि वलकुम फी हमा यश्तहु वलकुम फी हमा तश्तही अनफुसको वलकुम फी हमा तद्दाउन। कुरान बार बार कहता है तुम्हारे लिए वहां वो सब कुछ है जो तुम मांगोगे, तुम्हारे लिए वहां वो सब कुछ है जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे, जिसकी तुम तमन्ना करोगे। तो पहली बात क्या समझ आ गई कि अल्लाह सुबहान तआला आपकी ख्वाहिशें पूरी करेगा। माँ बाप भी पूरी कोशिश करते हैं बच्चियों की, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करें, कभी नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, जो ही उनके रिसोर्सेज होते हैं वो सबसे पहले बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं। माली तौर पे अगर कमज़ोर थे, आप बचपन का अपना कोई लम्हा याद कीजिए, तो नहीं मिला लेकिन जब बाप को अल्लाह ने दिया तो उन्होंने सबसे पहले आपकी वो ख्वाहिशें पूरी की। यही काम मेरा लिए हर समझदार मर्द करता है, बाप हो, भाई हो, बेटा हो। तो जब अल्लाह ताला आपसे कहता है पूरी करो, आप हैं कि बताते जाते, एक बताई दूसरी बताई। अगर अल्लाह आपसे पूछ ले कि आपकी क्या ख्वाहिश है जो जन्नत में पूरी हो, तो क्या कराएंगी? मेरी तो बहुत सी हैं। ये ना कहिएगा कि हमारी ख्वाहिशें नहीं है जी, अब तो हमें जन्नत में भी जाने का कोई शौक नहीं। जैसे किसी ने कहा, एक तो कुरान पढ़ के जब सारी चीज़ों से चिढ़ हो जाती है, कुछ पहनने को दिल नहीं करता, कुछ ओढ़ने को दिल नहीं करता, तो फिर अल्लाह की बात आती है जो जन्नत में जो मांगोगे देंगे, हमारा तो वहाँ भी कोई नहीं दिल करना। ऐसा है? हम तो नहीं ऐसे कहते, हम तो हर वो चीज़ वहाँ मांगेंगे जो अल्लाह ने हमें यहाँ रोका। तो अब आप देखिए कि कोई ख्वाहिश, किसी का बेटा नहीं, किसी की बेटी नहीं, किसी को मोटे होने की ख्वाहिश, किसी को पतले होने की ख्वाहिश। तब आप देखिए कि अल्लाह हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करा देगा। अल्लाह कहेगा डन डन, कुछ और पूछो, कोई और पूछो, कोई और भी है। और अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, अभी भी कुछ थी, तुम भूल गए हो। यानी जितना अल्लाह आपको याद दिलाता जाता है, तुम्हें वो बचपन में भी एक चीज़ का शौक था, वो जवानी में, वो तुम्हारी माँ ने तुम्हें फलां चीज़ नहीं थी लेके दी, वो तुम्हारी ख्वाहिश थी, वो तुम्हें, हमारे दौर में तो डांटते ही पड़ा थे ना शादी से पहले, अभी ये नहीं पहनना, अपने घर जाके करना। तो अपने घर जाके पता चला वो तो सास का घर है। अच्छा, पहले सास का घर था, बाद में फिर बहुओं का घर बनता है, हमारा दौर तो गुजर ही गया। अपनी सास अभी माशाल्लाह दुनिया में कह दे हयात होती हैं तो बहुएं आ जाती हैं। वो कहते हैं ना कि औरत सारी जिंदगी ये सोचती रहती है कि मेरा घर कौन सा है, हालांकि हर घर औरत का होता है, ये तो फजूल बातें हैं ना, लेकिन सब हमारे होते हैं। अल्लाह आपको याद करा रहा है बचपन, जवानी, वो याद करो उस दिन तुम दुखी थी, वो मौका याद करो, उस दिन ये हुआ था, वो हुआ था। और आप कहते हैं अल्लाह ताला बस और नीचे सब चाहिए, और जितनी ख्वाहिशें सब पूरी हो गई। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि आज मैं तुम्हारी एक ऐसी ख्वाहिश पूरी करूंगा जिसकी ख्वाहिश भी तुम्हें नहीं पता, और वह क्या कि आज के बाद मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। رادیتم مردیا رضی اللہ عنہ وردو ان ذالک لمن خشی رب۔ اللہ کہیں گے آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پردے ہٹاتے جاتے ہیں، اور وجوہ یومئذ نادرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن چہرے کتنے فریش ہوں گے، کتنے ریلیکس ہوں گے، کوئی فیشیل کروا لے تو کیا ہوگا جو اس دن چمک ہوگی۔ میک اپ کرا لیں، پارٹی میک اپ کرا لیں، کوئی آپ ٹونر مل لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن جو خوبصورتی ہوگی وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ اور اس وقت پھر آپ جب اللہ کا دیدار کریں گے تو آپ کو اس وقت کیا لگے گا کہ سب سے خوبصورت دولت جنت کی یہ ہے۔ آپ دیکھیے خانہ کعبہ کبھی گئے؟ اللہ لے کے جائے آپ کو بھی، مجھے بھی، بار بار قبولیت والے حج اور عمرے کرائے۔ اللہ کا گھر دیکھ کر کیا لگتا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ تو سوچئے کہ جس رب کے گھر کو دیکھ کر کیفیت ایسی ہوتی ہے، تو آپ بتائیے وہ وقت کیسا ہوگا جب اس رب کو دیکھیں گے، رب حاضر بیت میں رب کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے جتنا سوچیں گے نا اتنا آپ کو اچھا لگے گا، بالکل ایک فینٹیسی لگتی ہے، خواہشوں کی دنیا میں آپ ہیں، مدہوش ہوتے ہیں، اور جتنا اللہ چاہے آپ کو اپنا دیدار کرائے گا۔ کچھ لوگ روز، کچھ ہفتے میں ایک دفعہ، کوئی ایک ہی دفعہ ون سوائل، یہ سب کچھ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے۔ لیکن اب آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں دنیا میں، اللہ وہاں آپ سے راضی ہوں گے، اور جتنا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے آپ کو اتنا ہی اچھا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد کیا ہوگا اور دل کیا کرے گا؟ دیکھتے ہی رہے، اس کے بعد کس کو دیکھنے کی خواہش ہوگی؟ اچھا یہ بتائیں کہ کیا صرف اکیلے جائیں گے اللہ کو دیکھنے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ میں ایک اور چیز کہے، لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا۔ دنیا میں کچھ کی شادیاں نہیں ہوتی، کچھ کی ہوئی تو نبھی نہیں، کنہیں کے ہسبینڈ چلے گئے، کسی کی وائف پہلے چلی گئی، کچھ بھی ہے، جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ ہر جنتی کو ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو بھی दो से लेकर 70 तक की बातें, कहीं हूरे हैं तो कहीं औरतें हैं। हम इतनी लंबाई में ना भी जाएं तो आप ठीक है, आप खुशी रहें तो अच्छा है। माइंड ही ऑपोजिट हो जाता है औरतों का जब मियाँ की बेचारे की दूसरी की बात कर दे, जन्नत जन्नत ही नहीं लगनी है आपको। लेकिन आप अपने शोहर के साथ अल्लाह ताला का दीदार करेंगी, आज इसकी दुआ करें, ख्वाहिश भी करें, इरादा भी करें और बैठ के बात भी करें। स्टिल अगर आपके हस्बैंड के अंदर कोई खराबी है, नमाज रोज़ा अकीदे का जो, खुले हाथ से बात की, अब आप बहुत पक्की हैं, अब आपको नहीं छोड़ेंगे, आप उनके बच्चों की नहीं बच्चों के बच्चों की भी माँ हैं। औरत बच्चों के साथ मजबूत हो जाती है, शादी शुरू में कच्ची होती है, पुरानी शादी पक्की हो जाती है। आप रिस्क लीजिए, हजरत बोलिए, आसिया ने रिस्क लिया था ना, खड़ी हो गई थी, शी टुक द स्टैंड। और जब हस्बैंड जिसको शौक ही बिल्डिंग्स बनाने का था, आप हैरान होंगे कि वो दुआ किसी नबी ने नहीं की, किसी वली पैगंबर ने नहीं की, जो हजरत आसिया ने दुआ की कि रब्बिब निलींदा का भई तन फिर उलमा कहते, चूंकि फिरौन को इमारतें बनाने का शौक था, इस पे मान करता था, कहता था है ना मेरा हाल, पढ़िए उसकी ढींगे सूरह कसस में है, किससे बहुत जगह कुरान में कहता था, देखो मेरे महाल, मेरे घरों के नीचे से नहरें बहती हैं। और बेगार लेता था, मजदूरियां कराता था, बनी इसराइल जो उस दौर के मुसलमान थे उनको मिसयूज करता था। अल्लाह ने उसी की बीवी को जो दुआ सिखाई उसमें रब्बिब निली बना, यानी फिरौन की बनाई हुई इमारतें, इसकी कोठियां, इसके विलाज, इसके शातोज, इसके इन्हें बोली फलाने फलाने, सब इसको मुबारक, तू आप बना दे। तो अल्लाह ने उस औरत को हमारे लिए मिसाल बना दिया। अब आप अपने हस्बैंड के साथ फिर रही हैं, आपने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है और कोई पर्दा नहीं, कोई उसमें आपको ये नहीं वो नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अक्सर कहीं बाहर जाते हुए जो झगड़ा ही होता है, शादी में जाए घर से निकले, लड़ाई झिड़कियां डांट गुस्सा, दिल नहीं करता जाने को जब इतनी बातें सुननी पड़ जाए, कोई देर हो रहा है, कोई इंतजार हो रहा है, कोई बाहर है, वो कहते निकलो जी चलो जी। अक्सर देखिए पिकनिक पे जाना है, शादी पे जाना है, बरात पे जाना है, वलीमे पे जाना है, हमारे घरों में जहाँ चू जी जहाँ हो रहा है ना, बाहर वाले लोग आप पे रश कर रहे होंगे, हाय आज वो शादी पे जा रहे हैं, आज वो इतने महंगे कपड़े पहनेंगे, घर में लड़ाई लगी हुई है। और वो किसी ने कहा ना कि घर से निकलने तक लड़ाई हो रही होती है, और हाल में जाके तो हाथों में हाथ डाल के तस्वीरें खींच रहे होते हैं, बेगम इधर और फैमिली फोटो और बच्चों के साथ फोटो, और घर जाके फिर लड़ना है हमने, माशाल्लाह लड़ना खूब लड़ना, जन्नत में ऐसा कोई सीन नहीं होगा। कहीं आप बाहर जाएंगे, दूध और शहद की आबशारें, और आप नीचे तख्तों पे बैठे हैं, मुझे तो वो बहुत सारे सीन जो हम हर साल ही समर में माशाल्लाह यूरोप में मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं, इतनी हसीन जगह कि कभी कभी चुटकी काट के खुद को कहना पड़ता है कि मैं खुली आंखों से देख रही हूँ। यानी स्पेशली जब आप पूरे ऊपर नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं ना, नॉर्वे में, यकीन कीजिए कि अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। आप जमूर्द पत्थर होता है ना सब्ज रंग का, ओपल कहते हैं शायद उसको, इतने छोटे छोटे स्टोन्स आप अपने सेट्स में लगवा लें, कितने महंगे होते हैं रियल स्टोन, सबको पता है। आप जिन सड़कों से गुजरते हैं ना ऊपर, तो वो पहाड़ जो है ना वो बिल्कुल जमूर्द के लगते हैं, पहली दफा देख के तो चीखे निकल जाती हैं। ऊपर से अगर सनलाइट पड़ रही हो या ऊपर से फॉग हो, यानी अनएक्सप्लेनेबल सीन, और मौज ही मौज और मजे ही मजे। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि वो देखता ही जाएगा और देखता ही जाएगा, सूरत अल-दहर में आता है कि जन्नत की नेमतों को देखकर जन्नत ही मदहोश हो जाएगा, उसको होश नहीं रहेगा, वो जिधर जाएगा उसको लगेगा कि ये सबसे अच्छा। कहीं आप जा रहे हैं, आप जन्नत की कस्तूरी की महक, जन्नत की मट्टी कस्तूरी की, और फिर वो युस्कौना क्या पिलाए जाएंगे, शराबन तहूरा रहीकम मख्तूमा, यानी कुरान खोलते जाए आपको वो सब कुछ दिखेगा। और जो ही आप ये सब देखते हैं तो आपको अपने फ्रेंड्स अपनी सहेलियां याद आ जाती हैं, चलो आज मैं अपनी दोस्तों को बुलाती हूँ, वो कहती नहीं बाजार में ही चलते हैं, जन्नत में बाजार होगा जुम्मे के जुम्मे, और दुनिया के बाजारों से आते हैं तो मट्टी कट्टा खा के आते हैं, रंग काले और अजीबोगरीब। जन्नती जब बाजार से होकर आएंगे तो उनके घर वाले कहेंगे तुम पहले से हसीन हो गए हो, क्योंकि उस बाजार में अल्लाह ताला का दीदार होगा। यानी ये सारी हदीसें हैं, मैं तो आपको सिर्फ विजुलाइज करा रही हूँ, तो जितना अल्लाह ताला आपको देगा वो देखे ना। और इतने में फिर एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से आप नबी सल्लम को मिलने जाते हैं, अलमरु मामन अहब, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करेगा। आपके हस्बैंड कहते हैं बेगम आज नबी सल्लम के घर चलते हैं, اللہ ہمیں ایسا کر دے. اور جو ہی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو رستے میں آپ کو کہیں حضرت طلحہ کا, کہیں حضرت زبیر کا, ابو بکر کا, عمر کا محل دکھتا ہے, کیونکہ وہ سب ساتھ ہیں. اور جب آپ دیکھیں گے نبی کے گھر کو تو وہاں جا کر تو آپ کی آنکھوں سے وہ کہنا چاہیے کہ حیرت ہی نہیں ختم ہوتی. دنیا میں اگر دیکھ لیتے تو صحابی یا صحابیہ بن جاتے, لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ ہمیں ملے کتنی بڑی بات ہے. ایک صحابی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا اداس سا دیکھا, پوچھو کیا بات ہے آج آپ کا چہرے پہ چمک نہیں ہے؟ کہا اللہ کے نبی خیال آ گیا جس نے مجھے اداس کر دیا. اب ہمیں خیال آتا پٹرول مہنگا, بجلی مہنگی, بچوں کی شادی, یا ایک شادی میں جانا ہے 10,000 روپے کا خرچہ ہے, پٹرول لگانا ہے 50 لگ جائیں گے, کپڑے دیکھیں 1,00,000 لگ جائے گا, بڑا دکھی ہوں. ہمارے غم بھی تو دیکھیں نا ہماری جیسے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آج جس چیز نے مجھے دکھی کر دیا وہ یہ تھا کہ اگر میں اپنے کسی عمل کی وجہ سے جنت میں پہنچ ہی گیا اللہ کی رحمت سے, تو میں آپ کے مقام پہ تو نہیں پہنچوں گا, کیونکہ آپ کا تو مقام ہی بڑا اونچا ہے, وسیلہ. تو میں دنیا میں جب اپنے کاموں میں ہوتا ہوں اور مجھے ایک دم آپ کی یاد آتی ہے نا, تو میں فوراً آپ کو آ کے دیکھ لیتا ہوں. کبھی آپ مسجد نبی میں ہوتے ہیں, میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں, میں مطمئن ہو جاتا ہوں, کبھی ادھر کبھی ادھر. جنت میں جب میں آپ سے اداس ہوں گا, جب میں آپ کو مس کروں گا, پھر میں کیا کروں گا؟ کبھی سوچیں ہم نے دل کی گہرائی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق محسوس کیا؟ تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز سے خوشی نہیں ہوئی, المرء ما من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین اولئک حسن رفیقا. سورہ نساء کی شاید 49 یا 69 آیت ہے. اور ہم روز دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیے. نہیں دل جاتا؟ اتنی پیاری وہ جنت ہوگی, وہاں کوئی غم نہیں, کوئی مکھی نہیں, کوئی مچھر نہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی پریشانی نہیں, وہاں کوئی ڈاکٹروں کی فیسیں نہیں ہیں, وہاں کوئی وکیلوں کو نہیں دیکھنا, وہاں کوئی گٹر نہیں بند, وہاں کچھ بھی نہیں, نہیں ون و نہیں وہاں. اور نبی کا چہرہ دیکھ کر تو آپ کو لگے گا کہ اس سے حسین اور اس سے زیادہ فریش فیس ہم نے کسی کا نہیں دیکھا. اور آپ کی مہمان نوازی ہو رہی ہے, جو مانگو ملے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اب میں کسی کے گھر جاتے ہیں, اگلا بہت کچھ بھی بنائے, کوئی ضروری تو نہیں نا کہ ہر چیز آپ کو اچھی لگے, آپ کے ٹیسٹ کی ہو. کبھی مہمان سب کچھ بناتے ہیں, آپ کو ایک بھی اچھا نہیں لگتا یا آپ کے ٹیسٹ میں نہیں آتی. 10 چیزیں ڈالتے ہیں, ایک چیز ایسی ڈالتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں میں چیز نہیں کھاتی, نہیں میں وائٹ سوس نہیں کھاتی, وہ سب پڑا پڑا ہے. جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو. اصل بات یہ ہے, ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں, کیا ہم اس کی تیاری کرتے ہیں, اس کی خواہش بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں جس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کر رہی ہوں نا, آہستہ آہستہ ہم دنیا میں اتنے مادہ پرستی میں جا گئے کہ اب ہمیں جنت کی خواہش بھی نہیں رہی. کیا نہیں ہمارے پاس؟ ایک بچہ تھا, اس کو ماں نے کہا جنت میں یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا, تو کہہ رہا یہ تو سب میرے پاس پہلے ہی ہے. بلیف می, یہ جو دنیا ہے نا یہ بری نہیں ہے, پر اس کے ساتھ ایک جراثیم آتا ہے وہ برا. اور وہ کہ جب دنیا زیادہ ہو جاتی ہے نا تو آخرت پیچھے پڑ جاتی ہے. دیکھیں نا, ابھی کھانا کھا لیا, اب آپ کے سامنے کچھ 10 کھانوں کے نام لے, یہ کھائیں گے, بھوک تو نہیں, نہیں مجھے نہیں بھوک. اور آپ ہوں بھوکے, اور کوئی آپ کو کہتا ہے ابھی دال چاول کھائیں گے, تو منہ میں پانی آئے گا نا. دنیا کی بھوک رکھیں تاکہ آخرت میں کھانے کو دل کرے. دنیا میں رکھا سوکھا جو نصیب کے لے لیں, اچھا ملتا اچھا پہن لیں, اگلے دن برا ملتا برا پہن لیں, کبھی کچھ بھی نہیں ہے جو مرضی ہے وہ 10 سال پرانا پہن لیں, دل میں ہرس نہ رکھے. اور آپ جب نبی کے گھر جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ باتیں کر رہے ہیں, دنیا میں کوئی آپ کا پیارا, آپ کا کوئی استاد, کوئی آپ کا محسن, کوئی مربی, کوئی مزکی, کوئی پیار جسے آپ کرتے ہیں, وہ آپ کی بات سنے, وہ آپ کی دعوت قبول کرے, آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ ایک دم بندہ چوتھی سیڑھی پہ پہنچ جاتا ہے کہ میری کتنی عزت ہوئی. آپ اکثر ایک جملہ بولتے ہیں نا, آپ نے آ کر عزت بخشی, یہ آپ اس کے ساتھ محسوس کرتے ہیں جس کی آپ کے دل میں محبت اور عزت ہو. آپ میری دعوت پہ آئے, آپ نے مجھے قبول کیا, آپ نے میری خواہش پوری کی, اور آپ جنت میں بیٹھے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوسٹ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سناؤ بھائی کیا کرتے تھے, क्या वो जो दिल के दुखड़े और जो दिल के अंदर की बातें थी उसको जहन में लाएं तो इस वक्त दुनिया में रहने को दिल करता है। ये थी वो चीजें जिसकी वजह से सहाबा कराम का दिल दुनिया में नहीं लगता था। हजरत अबू जर रजी अल्लाह अन्हु के घर पे किसी ने जाकर देखा, सामान ही नहीं है, खाली घर पड़ा है। कहा अबू जर, आपके घर का सामान किधर गया? कहा दूसरे घर है। उन्होंने सोचा होगा कि इनके भी को हमारी तरह दो तीन घर हैं। कहा अच्छा, कुछ इधर भी रख लेते। कहा यहाँ का मालिक हमें यहाँ रहने ही नहीं देता। फिर वो ये समझे कि दूसरे घर से मुराद दारुल आखिरत ही। तो बात यह है कि एक दिन हम जन्नत में होंगे।